आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए एनडीए हलकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जेडीयू कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए मीटिंग करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में शिमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शुरू होने वाले दुबई एयर शो 2025 में अपनी दिफाई कुव्वत का मुजाहरा करेगा। बरतानिया में पनाह देने से मुतालिक इस्लाहात के तहत पनाह गुजीनों को कयाम करने के लिए 20 साल के इंतजार का सामना करना होगा। भारत के महकमे मौसमियात ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला में शदीद बारिश की पेशगोई की है और लग्जमबर्ग के स्ट्रॉसन के मकाम पर भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने मर्दों के कंपाउंड जुमरे में GT ओपन इंडोर आलमी सीरीज का खिताब जीता है। अब खबरें तफसील से। बिहार में एक नई सरकार की तश्कील के लिए एनडीए की इत्तेहादी पार्टियों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नई दिल्ली और पटना में इन पार्टियों के अरकान के माबेन तबादले ख्याल और बहुत सी मीटिंगों का इनेकाद किया जा रहा है। काबीना के ढांचे और वजीरों की काउंसिल में मुख्तलिफ इत्तेहादी पार्टियों की नुमाइंदगी पर बातचीत जारी है। हाल ही में कराए गए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 89 सीटों पर जीत हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि चिराग पासवान की क्यादत वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को 19 सीटें मिली हैं। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 5 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें हासिल हुई हैं। पटना में जेडीयू कानून साज पार्टी के लीडर चुनने के लिए आज मीटिंग होगी। उम्मीद है कि जेडीयू के 85 नए मुंतखबा अरकान असेंबली नीतीश कुमार को मुत्तफिका तौर पर पार्टी के कानून साज लीडर के तौर पर मुंतखब करें। उम्मीद है कि बीजेपी भी एनडीए की इस मीटिंग के बाद अपना कानून साज लीडर चुने। एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग की भी आज मुनाकिद किए जाने की तवक्को है। पेश है एक रिपोर्ट।
एनडीए कानून साज पार्टी की तरफ से उसका लीडर चुने जाने के बाद ही नई सरकार की तश्कील का दावा पेश किया जाएगा। इससे पहले मौजूदा सरकार की आखिरी काबीना मीटिंग आज वजीर आला नीतीश कुमार की क्यादत में मुनाकिद होगी। इस मीटिंग में मौजूदा काबीना को तहलील करने की सिफारिश की जाएगी ताकि नई सरकार की तश्कील का रास्ता हमवार किया जा सके। उसके बाद वजीर आला नीतीश कुमार गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। इसी दौरान नई हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये तकरीब पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनाकिद होगी, जहां गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान नए वजीर आला और दीगर काबीना अरकान को हलफ दिलाएंगे। उम्मीद है कि हलफ बर्दारी की ये तकरीब 20 नवंबर को मुनाकिद होगी। इसी दौरान पटना की जिला इंतजामिया ने आज गांधी मैदान में आम लोगों के लिए 20 नवंबर तक बंद कर दिया है। धर्मेंद्र कुमार रॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
असेंबली चुनाव के नतीजे के ऐलान के 2 रोज बाद बिहार के आला इंतखाबी अफसर विनोद सिंह गुंजियाल ने पटना के राजभवन में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां को रियासती असेंबली के 243 नौ मुंतखबा अरकान की फहरिस्त सौंप दी है। इस फहरिस्त में AIMIM, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कानून साजों के साथ साथ एनडीए के 202 और महागठबंधन के 34 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इसी दौरान भारत के चुनाव कमीशन ने असेंबली चुनाव और जिमनी चुनाव कराए जाने के बाद बिहार 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके से मिसाली जाब्ता अमल हटा लिया है। चुनाव कमीशन ने इस पेशरफ्त के बारे में भारतीय सरकार के काबीना सेक्रेटरी और मुतालिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को मुत्तला करने के लिए उन्हें एक मकतूब तहरीर किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में होने वाली शिमाली जोनल काउंसिल NZC की मीटिंग की सदारत करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान और दीगर के अलावा चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 32वें NZC मीटिंग में रियासती सरकार के दरमियान पानी के बंटवारे के उमूर और तरक्याती कामों में तालमेल पर तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। एक रिपोर्ट।
وزیراعظم نریندر مودی نے ٹیم بھارت کا ویژن دیا ہے اور زونل کونسلز اس سمت میں اہم تعاون دے رہی ہیں. اس اعتماد کے ساتھ کہ مضبوط ریاستیں ایک مستحکم ملک کی تعمیر کریں, زونل کونسلوں نے دو یا اس سے زیادہ ریاستوں یا مرکز اور ریاستوں پر اثر ڈالنے والے امور پر مذاکرات اور تبادلہ خیال کے لیے ایک میکانزم فراہم کیا ہے. اس کے ذریعے ایک پلیٹ فارم کے طور پر خدمت انجام دی جائے تاکہ آپسی تعاون کو بڑھایا جا سکے. البتہ گزشتہ کچھ برسوں سے زونل کونسلوں کا رول اب ایک ایڈوائزری کے طور پر ہے. یہ زونل کونسلز مختلف شعبوں میں تعاون اور آپسی مفاہمت کے صحت مند رشتوں کو فروغ دینے میں ایک اہم عنصر ثابت ہوئی ہیں. گزشتہ 11 سال میں سبھی ریاستی سرکاروں, مرکزی وزارتوں اور محکموں کے تعاون کے ساتھ مختلف زونل کونسلز اور ان کی مستقل کمیٹیوں کی کل 63 میٹنگیں ہوئی ہیں. نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کریم احمد.
دبئی ایئر شو 2025 آج متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا. بھارت اس دو روزہ ایئر شو میں اپنی دفاعی طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ کرے گا. بھارتی فضائیہ, سوریہ کرن ایروبیٹک ٹیم اور ایل سی اے تیجس کے ساتھ ایئر شو میں شرکت کرے گی. دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. اپنے دورے میں جناب سیٹھ متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی صدارت کریں گے. وہ بھارت, متحدہ عرب امارات, آسٹریلیا, امریکہ, برازیل, برطانیہ اور اٹلی کی تقریباً 50 کمپنیوں کے ساتھ صنعت سے متعلق ایک گول میں اس کانفرنس کی بھی صدارت کریں گے, جس کا مقصد بھارت میں دفاعی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبے میں تعاون میں اضافہ کرنا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کل دوحا میں قطر کے امیر تمیم بن حماد السانی سے ملاقات کی. ڈاکٹر جے شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی کی پرجوش مبارکباد اور نیک خواہشات سے انہیں مطلع کیا اور بھارت اور قطر کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے کے عزم کو دہرایا. وزیر خارجہ نے اشتراک بڑھانے اور نئے موقع تلاش کرنے کے بارے میں قطر کے امیر کی ستائش کی. ڈاکٹر جے شنکر نے دوحا میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کے ساتھ ساتھ وسیع علاقائی اور عالمی امور کی پیش رفت کے بارے میں بھی اپنے اپنے خیالات پیش کیے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. برطانیہ موجودہ دور میں امیگریشن سے متعلق اب تک کی سب سے بڑی تبدیلی کا اعلان کرے گا. برطانیہ کی داخلہ سیکرٹری شبانہ محمود آج ایوان نمائندگان سے خطاب کریں گی, جس کا مقصد موجودہ دور میں غیر قانونی مائیگریشن پر قابو پانے کے لیے ابھی تک کی سب سے وسیع اصلاحات کرنا ہے. داخلہ سیکرٹری نے کہا کہ برطانیہ کو اس بات پر اپنا نظم و نسق اور کنٹرول دوبارہ قائم کرنا چاہیے کہ کون اس ملک میں داخل ہوتا ہے اور کون قیام پذیر ہو جاتا ہے. ڈنمارک کے نظام پر مبنی ان اصلاحات کا مقصد برطانیہ کو غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کم دلچسپی والا ملک بنانا ہے, جہاں سے ان لوگوں کو آسانی سے ملک بدر کیا جا سکے. منصوبے کے تحت پناہ گزینوں کو مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے سے پہلے 20 سال کا انتظار کرنا ہوگا. تجویز کے مطابق کسی پناہ گزین کی حیثیت عارضی ہوگی اور اس کا انحصار لگاتار جائزے پر ہوگا. جب کسی پناہ گزین کی شہریت اس کے اپنے آبائی وطن سے ختم کر دی جائے گی تو ان لوگوں کو برطانیہ میں محفوظ سمجھا جائے گا. بنگلہ دیش میں انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبونل سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کے دو قریبی ساتھیوں سے متعلق انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کے انتہائی اہم معاملات میں آج اپنا فیصلہ سنائے گا. یہ الزامات گزشتہ سال جولائی اور اگست میں ہونے والی طلبہ کی قیادت والی تحریک سے وابستہ ہیں, جس کے دوران استغاثہ نے الزام لگایا تھا کہ اس وقت کی عوامی لیگ حکومت نے مظاہرین کے خلاف پرتشدد کارروائی کی تھی. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج تمل ناڈو, پڈوچیری, کرائیکل, آندھرا پردیش, کیرلا اور ماہے کے دور دراز علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 روز کے لیے انڈمان اور نکوبار جزائر کے دور دراز علاقوں میں بھی بجلی کڑکنے اور تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, مدھیہ مہاراشٹر, راجستھان اور ودربھ میں آج تک سرد دہر کے حالات کا امکان ہے. ایک رپورٹ.
جنوب مغربی خلیج بنگال میں بنے ہوا کے کم دباؤ کے حلقے کی وجہ سے آج آندھرا پردیش کے کئی علاقوں میں بارش ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق نیلور اور تروپتی اضلاع میں کہیں کہیں اوسط سے تیز بارش ہو سکتی ہے, جبکہ پرکاسم, انمایا اور چتور اضلاع میں ہلکی سے معتدل بارش ہو سکتی ہے. حکام نے لوگوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور ماہی گیروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سمندر میں جانے سے گریز کریں. وجے واڑا سے الو مرالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کلیم احمد.
तमिलनाडु में मौसमियात के इलाकाई मरकज ने श्रीलंका के साहिल के करीब जनूब मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है। आइंदा 24 घंटे के दौरान इसके मगरब शिमाल मगरब की तरफ बढ़ने का इम्कान है। कम दबाव के सबब कुडलूर, मयिलादुथुरई, नागापट्टिनम और तिरुवरूर इजला में कहीं कहीं तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है, जबकि दीगर मकामात पर बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। तफसील हमारे नमा निगार से।
समुद्री तूफान मोंथा के बाद बारिश में आई मामूली कमी के बाद साहिली इलाकों में इस हफ्ते दोबारा बारिश होने का इम्कान है। डेल्टा के कई अजला और जनूबी खित्ते के कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर बारिश की पेशगोई की गई है। जिला इंतजामिया को एहतियाती इकदाम की हिदायत दी गई है, जबकि कुदरती आफात से निपटने के रियासती मरकज की जानिब से 24 घंटे निगरानी जारी है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
दिल्ली एनसीआर खित्ते में हवा का मयार मुसलसल बहुत खराब जुमरे में है। आज सुबह 7 बजे तक हवा का मयार 359 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार और चांदनी चौक में हवा के मयार की सतह 383 थी, जबकि आर के पुरम में 366 और IGI हवाई अड्डे पर 300 थी। गोवा के पणजी में शतरंज के फिडे आलमी कप के पांचवें राउंड के टाई ब्रेक मुकाबले में पी हरिकृष्ण मेक्सिको के जोज मार्टिनेज अल्कांतारा से हारने के बाद ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइसी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वाहिद भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। हरिकृष्णा, जिन्होंने अब तक मायूसकुन खेल का मुजाहिरा किया है, मार्टिनेज से हार गए थे। इससे पहले मार्टिनेज ने उज्बेकिस्तान के नोडरबेक यकुबोव को हराने के बाद इस मुकाबले में एक तारीख रकम की थी। लग्जमबर्ग में स्ट्रासन के मकाम पर मर्दों के कंपाउंड जुमरे में भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने GT ओपन इंडोर आलमी सीरीज का खिताब हासिल किया है। कुशल ने डबल शूट ऑफ में दुनिया के साबिक नंबर एक अमरीकी खिलाड़ी स्टीफन हैंसन को हराने के बाद सोने का तमगा जीता है। इससे पहले कुशल सेमीफाइनल में फ्रांस के आलमी चैंपियन निकोलास जेरार्ड को हराने के बाद फाइनल में पहुंचे थे। भारत के गणेश मणि रत्नम ने भी 21 से कम उम्र के मर्दों के कंपाउंड जुमरे में कांसे का तमगा हासिल किया है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव आज सुबह ब्राजील के शहर बेलम पहुंचे। वो आबोहवा में तब्दीली से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP30 में शिरकत करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब यादव ने कहा कि अगले कुछ दिन में वो आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। नीज आबोहवा से मुतालिक माहौलियात और दीगर अहम मामलात पर भारत का नजरिया पेश करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि वो नतीजा खेज बातचीत के लिए पुरुम्मीद हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत में जेर तामीर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जायजा लिया। प्रोजेक्ट की टीम से बातचीत के दौरान वजीर आजम ने ट्रेन की रफ्तार और पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। बिहार में नई सरकार की तश्कील के सिलसिले में बातचीत जारी है। इस हवाले से अखबार की शह सुर्खी है, हुकूमत साजी की तैयारियां तेज, अहम मीटिंग आज। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, इसरो की 2027 में पहला इंसानी स्पेस मिशन भेजने की तैयारी, इससे पहले बगैर खलाबाज के 3 टेस्ट फ्लाइट्स की जाएंगी। खेल के सफे की अहम सुर्खी है, भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने टोक्यो में डीफलिंपिक्स एयर राइफल में सोने का तमगा जीता। अखबार के बैन अलावामी सफे की सुर्खियां इस तरह हैं, हज के लिए नई शराइत, किसी भी तरह के मर्ज में मुबतला अफराद हज नहीं कर सकेंगे।
और आखिर में खास खबर एक बार फिर, बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए NDA हलकों में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। JDU कानून साज पार्टी आज अपना लीडर मंतखब करने के लिए मीटिंग करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में शिमाली जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शुरू होने वाले दुबई एयर शो 2025 में अपनी दिफाई ताकत का मुजाहरा करेगा। बरतानिया में पनाह देने से मुतालिक इस्लाहात के तहत पनाह गुजीनों को क्याम करने के लिए 20 साल का इंतजार करना होगा। भारत के महकमा मौसमियात ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और लग्जमबर्ग के स्ट्रासन के मकाम पर भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने मर्दों के कंपाउंड जुमरे में GT ओपन इंडोर आलमी सीरीज का खिताब जीता है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।